देव से बात करने के बाद सानवी किचन में पहुंचती है। उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था, आज मैं रात को खाना घर पर नहीं खाऊंगा, तो खाना मत बनाना। स्लिप पढ़कर वो खुश हो जाती है। क्या आज उसकी छुट्टी है? क्या बात है, आज तुम जल्दी घर आ गई? रिया ने सानवी को घर पर देखा तो हैरानी से पूछा, आज खाना बनाने से छुट्टी मिल गई क्या? सानवी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, नहीं, जब मैं वहां गई तो उन्होंने मना कर दिया। तो आज तुम फ्री हो? रिया ने पूछा। नहीं, सानवी ने सिर हिलाया। क्यों, क्या हुआ? रिया पास आ गई और सानवी से बोली, एजेंसी से कॉल आई थी, आज शाम को एक बड़ी पार्टी है, उन्हें कुछ काम करने वाले लोगों की जरूरत है, कुछ लोग मना कर चुके हैं, तो तुम चलोगी हमारे साथ? सानवी थोड़ी असमंजस में बोली, मगर मैं तो बहुत थकी हुई हूं, पहले वहां गई थी फिर वापस आई, अब मैं रेस्ट करना चाहती हूं। थका देने वाली बात नहीं है, रिया ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत बड़े लोगों की पार्टी है, अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, हमारे खर्च भी निकल आएंगे। चलो ना, थोड़े घंटों का तो काम है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस तैयार हो जाओ। देखो ना, तुम्हारी फोन की कंडीशन क्या हो गई है, बात करते करते बंद हो जाता है, रिया ने झुंझलाकर कहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर जोड़ दिया, हमारी जिंदगी में कितने मसले हैं, सब पैसों की वजह से अटके पड़े हैं। रिया की ये बात सच थी, वो लड़कियां तंगी से गुजर रही थीं, लेकिन हार मानना उनमें से किसी को नहीं आता था। पढ़ाई, छोटे मोटे जॉब्स और सपनों को पकड़े रहना, यही उनका रोज का संघर्ष था, अपने कल को बेहतर बनाने की कोशिश में। ठीक है यार, क्यों दुखी बातें करती हो, चलो चलते हैं, सानवी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। आखिरकार बहुत मनाने के बाद वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। हम कृति को भी साथ ले लेते हैं, उन्हें तीन लोग चाहिए, रिया ने सुझाव दिया। कोई फायदा नहीं, सानवी ने सिर हिलाया, तुम जानती हो वो नहीं जाएगी, हम दोनों ही चलें, काम हो जाएगा। दोनों उस जगह पहुंचीं जहां शाम की बड़ी पार्टी थी, एक आलीशान फार्म हाउस जैसा वेन्यू, रोशनी से जगमगाता हुआ, गाड़ियों की लंबी कतार, बाहर स्टाफ की भागदौड़ और अंदर से आती हल्की म्यूजिक की धुन। लगता है हम लेट हो गए, रिया ने घड़ी देखकर कहा, कहीं इन्होंने हमें अंदर ही ना घुसने दिया तो? सानवी को हल्की चिंता हुई। आराम से चलो आगे, रिया बोली। रास्ते में सानवी ने चुटकी ली, तुम तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हो? रिया हंसी, हाँ मानती हूँ, पर क्या ऐसे ही उठकर आ जाती, थोड़ी तो शक्ल बनानी पड़ती है। उसी वक्त रिया का फोन बज उठा, उसने स्क्रीन देखी और कहा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। सानवी भीतर चली गई, रिया थोड़ी दूर हटकर कॉल पर बात करने लगी, एजेंसी वाले थे, आखिरी मिनट की ड्यूटी डिटेल्स कन्फर्म कर रहे थे। कॉल खत्म करते ही रिया तेजी से ग्लास वाले एंट्रेंस की ओर बढ़ी, उसने हड़बड़ी में दरवाजा धक्का देकर खोला, उसी पल अंदर से कोई बाहर आ रहा था। रिया हल्का सा पीछे लड़खड़ा गई, सामने एक लंबा व्यवस्थित सूट पहने लड़का, शिव मेहता, जो अभी अभी हॉल से बाहर निकल रहा था। सॉरी, रिया ने तुरंत कहा। नो, आई एम सॉरी, शिव मेहता ने विनम्रता से जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोला, आप ठीक हैं? रिया की धड़कन अभी भी तेज थी, शायद टक्कर से ज्यादा उसकी हड़बड़ी और घबराहट की वजह से। अंदर पार्टी चल रही थी, बाहर उसकी शिफ्ट शुरू होने वाली थी और सामने खड़ा था कोई ऐसा इंसान जिसे वो अभी तक जानती नहीं थी, लेकिन शायद ये मुलाकात यूं ही अनदेखी होकर नहीं जाएगी। रिया जल्दी से अंदर चली गई, मगर शिव मेहता की नजरें उसी पर ठहरी रह गईं। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे उस खूबसूरत सी लड़की की झलक उसके दिल में कोई हलचल पैदा कर गई हो। कौन है ये, उसके मन में सवाल आया। वो जीन्स और शर्ट में थी और किसी भी तरह से वेट्रेस नहीं लग रही थी। शिव हल्की मुस्कान के साथ सोचता हुआ वहां से बाहर चला गया। ये पार्टी एक आलीशान होटल में समंदर के किनारे ओपन एरिया में आयोजित थी। चारों ओर शानदार डेकोरेशन, क्रिस्टल जैसी जगमगाती लाइट्स और महंगे परिधानों में सजे लोग। टेबल्स खुले आसमान के नीचे सजे थे और हवा में महंगे इत्र की खुशबू के साथ समंदर की नमकीन ठंडक थी। एक साइड पर आर्यन राजवंश और जगत राठौर किसी बिजनेस डील पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातचीत खत्म होते ही वो शख्स चला गया। आर्यन और जगत अब अकेले खड़े थे, तभी वहां एक स्मार्ट सा नौजवान आया। क्या हो रहा है भाई, कहते हुए वो सीधे जगत के गले लग गया। जगत हंसकर बोला, अरे इंदर, तू कहां था या, कई दिन से दिखाई ही नहीं दिया। मेरे भी गले लग जाओ, वो हंसते हुए बोला और आर्यन राजवंश को भी गले लगाया। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतने दिन हो गए, तुम कहां थे, तुम्हें देखा ही नहीं। मैं साउथ अमेरिका गया हुआ था, बस दो हफ्तों के लिए, इंद्र ने सफाई दी। दो हफ्तों के लिए गए थे तो कम से कम एक फोन कर सकते थे इंदर, जगत ने गुस्से में कहा। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, कोई इंसान दो हफ्ते गायब रहे और सूचना भी ना दे, ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। आर्यन पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। भाई, आप अच्छे से जानते हैं मुझे ऑफिस में दिलचस्पी ही नहीं है, इंद्र ने बेपरवाही से कहा। दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, जगत ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारी सिंगिंग और म्यूजिकल ग्रुप के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारा म्यूजिक देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है, ये गर्व की बात है, लेकिन फैमिली बिजनेस को अनदेखा करना ठीक नहीं। तुम्हें हमारी जिम्मेदारी भी उठानी होगी, जगत ने बीच में हंसकर कहा। बिल्कुल सही, इंद्र राठौर सिर्फ स्टेट स्टार बनकर नहीं रह सकता, घर का काम भी उतना ही जरूरी है। याद है मॉम डैड ने तुम्हें मेरे बराबर की जिम्मेदारी दी है, इंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना, बस अभी कुछ शोज लाइनअप हैं, इसलिए व्यस्त हूं। देख लो जगत, फिर वही बहाना, आर्यन ने मजाकिया लहजे में कहा। इंद्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा, पता है ना मेरे फैन इंतजार कर रहे हैं। जगत ने लंबी सांस ली, ये भी चला गया। आर्यन ने जगत की तरफ देखा, जाएगा कहाँ, आखिर ऑफिस तो उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसका म्यूजिकल बहाना। उधर इसी पार्टी में सानवी और उसकी सहेली रिया कैटरिंग टीम के साथ वेट्रेस का काम कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्यन राजवंश यही मौजूद है। सानवी ने प्लेटें लगाते हुए फुसफुसाकर पूछा, सुबह मैंने कहा था ना उस छोटे डॉग को खाना खिला देना, किया कि नहीं? खिला दिया, रिया ने ट्रे पर ग्लास सजाते हुए कहा। बिल्डिंग के नीचे जो पपीज हैं उन्हें भी खिलाया, और गार्ड से भी कह दिया कि जब मैं आऊं तो बता देना। सानवी मुस्कुराई, शाबाश, कहीं तो भूल जाते। दोनों एक ड्रिंक काउंटर के पास खड़ी थी। सानवी मेहमानों को ड्रिंक परोस रही थी कि अचानक उसने महसूस किया कोई उसे ध्यान से देख रहा है। उसने नजर उठाई, कुछ दूरी पर इंद्र राठौर खड़ा था। वो अभी अभी मेहमानों से मिलकर बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर सानवी पर ठहर गई। मासूम चेहरा, सादगी और चमकती आंखें, इंद्र के दिल में जैसे कोई चिंगारी सी जल गई। जैसे ही सानवी ट्रे लेकर आगे बढ़ी, इंद्र ने पुकारा, हेलो। सानवी रुक गई, उसे लगा ड्रिंक चाहिए। जी क्या लेंगे सर? इंद्र ने ट्रे से एक ग्लास उठाया, लेकिन उसकी दिलचस्पी बातचीत में थी। लगता है आपको जानवरों से बहुत प्यार है, सानवी ने हल्की मुस्कान दी। जानवर तो प्यारे होते ही हैं। मेरी बात तो सुनिए, इंद्र ने कहा जब वो आगे बढ़ने लगी। वो रुक गई, जी मुझे जानवर पसंद हो, मुझे भी एनिमल से प्यार है, शहर में कई डॉग शेल्टर हैं, कभी साथ चलेंगे? सानवी ने सहज पर दूरी भरे अंदाज में कहा। इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं सर, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कई जगह मिल जाएंगी, मैं तो बस जब टाइम मिलता है चली जाती हूँ। तभी रिया ट्रे लेने वापस लौटी और बातचीत सुनकर बीच में आ गई। सर आप सच में शेल्टर जाना चाहते हैं तो सानवी को कॉल कर लीजिए, ये अक्सर जाती है। सानवी ने रिया को घूरा, लेकिन देर हो चुकी थी। इंद्र ने फोन निकाला, अच्छा तो नंबर? रिया ने झटपट कहा, जी नोट कीजिए, और सानवी का नंबर बता दिया। इंद्र ने नंबर सेव करते हुए कहा, थैंक्स, कभी साथ चलते हैं। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो दूर गया, सानवी गुस्से में बोली, मेरा नंबर क्यों दिया, क्या जरूरत थी?
रिया ने कहा, अरे यार मौका है, हमें पूरी उम्र वेट्रेस बनकर तो नहीं रहना, कोई अच्छा अमीर हैंडसम लड़का दिलचस्पी ले तो बुरा क्या है, सेटल हो जाएगी तो फायदा ही होगा, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, सानवी ने नाराजगी से कहा। काम कर और किसी को नंबर मत बांट, रिया हंसती, देखना तू ही मान जाएगी। दूर से इंद्र ने एक बार फिर सानवी को देखा, उसकी मुस्कान में अब एक अनकही चाहत थी।